नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बड़े प्रभावशाली और हाँ कुछ हद तक विवादास्पद भी ब्रिटिश दार्शनिक की बात करेंगे, सर अल्फ्रेड जूल्स एयर, एजे एयर के नाम से ज्यादा मशहूर हैं। 1910 से 1989 तक उनका जीवन काल रहा।
जी हाँ बिल्कुल, एयर का नाम आते ही लॉजिकल पॉजिटिविज्म या तार्किक प्रत्यक्षवाद का ख्याल आता है। उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो इस विचार को अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में लेकर आए, और सिर्फ लाए नहीं, उसे पॉपुलर भी बनाया। उनका काम, जैसा आपने कहा, विश्लेषणात्मक दर्शन यानी एनालिटिकल फिलॉसफी में एक क्रांति जैसा था।
हाँ, और उनका वो सत्यापन सिद्धांत, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, उसने तो जैसे दर्शन की दुनिया में एक भूचाल ला दिया था।
बिल्कुल, एक धमाका ही था वो। उसने जो पारंपरिक दर्शन की शाखाएं थीं, खासकर तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स,
हाँ वास्तविकता क्या है, ईश्वर है या नहीं, ये सब सवाल,
जी, और नैतिकता यानी एथिक्स, इन सबको उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे डाली।
तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये तो भाषा ज्ञान और हमारे सोचने के तरीके पर एक बड़ा सवाल था। चलिए आज एयर के इन विचारों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं।
देखिए, एयर को समझने के लिए थोड़ा उस समय का माहौल देखना होगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत, खासकर 1920 और 30 का दशक, वो एक बड़े बौद्धिक उथल पुथल का समय था। वैज्ञानिक तर्कवाद, साइंटिफिक रैशनलिज्म का काफी जोर था।
मतलब विज्ञान की तरक्की से लोगों को लग रहा था कि अनुभव और तर्क ही असली रास्ता है, पुरानी बातें बेकार हैं।
हाँ बिल्कुल, एक तरह से वैज्ञानिकता की हवा बह रही थी, और इसी माहौल में वो वियना सर्कल वाले लोग थे।
हाँ, वियना सर्कल, मॉरिट्ज श्लिक, रुडोल्फ कारनाप,
जी, वो लोग तार्किक प्रत्यक्षवाद गढ़ रहे थे। उनका मकसद था कि दर्शन को साफ सुथरा बनाया जाए, उसे अनुभवजन्य साक्ष्य, एम्पिरिकल एविडेंस, मतलब जिसे हम देख परख सकें,
अच्छा
हाँ, और कठोर तार्किक विश्लेषण पर आधारित किया जाए। उनके लिए जो पुराने बड़े बड़े सवाल थे तत्वमीमांसा के, वसल में सवाल ही नहीं थे, वो भाषा के गलत इस्तेमाल से पैदा हुई अर्थहीन बातें थीं।
दिलचस्प है, तो ये वियना सर्कल तो था ही, और क्या चीजें थी जिन्होंने एयर की सोच पर असर डाला होगा?
कई चीजें थीं। एक तो बर्ट्रेंड रसेल और लुडविग विटकिनस्टाइन जैसे बड़े दार्शनिकों का काम था भाषा और तर्क पर।
हाँ, उन्होंने दिखाया था कि कैसे भाषा हमें उलझा देती है।
सही कहा। फिर गणितीय तर्क में नई खोजें हो रही थीं, और विज्ञान में तो क्रांतियां हो ही रही थीं। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब मिलकर हमारी दुनिया और ज्ञान की समझ को हिला रहे थे। एयर इन सब के बीच खड़े थे।
उनके निजी जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। लंदन में जन्म हुआ 1910 में, परिवार के बारे में कुछ बताइए।
हाँ, उनका परिवार काफी मिला जुला था। पिता स्विस फ्रांसीसी थे, माँ डच यहूदी, और माँ का परिवार तो वो मशहूर सिट्रोइन कार कंपनी वाला था।
अरे वाह,
जी, तो इस माहौल ने उन्हें खुलापन दिया, भाषाओं पर अच्छी पकड़ दी। शायद इसीलिए वो बाद में भाषा की बारीकियों पर इतना ध्यान देते थे।
और पढ़ाई जाहिर है अच्छी जगह से हुई होगी।
हाँ बिल्कुल, पहले ईटन कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित है, और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से। वहाँ उन्होंने क्लासिक्स और दर्शन पढ़ा। नींव बहुत मजबूत थी उनकी।
आपने वियना सर्कल का जिक्र किया, वो तो वियना में थे
जी।
और ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तो ये कनेक्शन कैसे बना? ये उनके जीवन में अहम मोड़ लगता है।
बिल्कुल, वो 1933 में वियना गए थे, और वो यात्रा उनके लिए बहुत निर्णायक साबित हुई। सोचिए, वो युवा थे, विचारों से भरे हुए, और वहाँ उन्हें सीधे वियना सर्कल की मीटिंग्स में जाने का, श्लिक और कारनाप जैसे लोगों से बात करने का मौका मिला।
अच्छा, सीधे उनसे मिलने का?
जी, ये सिर्फ किताबों से पढ़ना नहीं था, ये विचारों को बनते हुए देखना था। इसी अनुभव ने उनके अंदर तार्किक प्रत्यक्षवाद के बीज बोए, और उन्हें लगा कि ये विचार अंग्रेजी दुनिया तक पहुंचने चाहिए, और इसी से उनकी वो मशहूर किताब निकली।
इतनी पहचान दी, सत्यापन सिद्धांत, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल, सुनने में तो सीधा लगता है, पर इतना हंगामा क्यों हुआ इस पर? क्या है ये असल में?
सिद्धांत दिखने में तो काफी सरल है, पर इसके जो नतीजे थे वो बहुत क्रांतिकारी थे। एयर ने कहा कि कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट तभी सार्थक है, मीनिंगफुल है, मतलब उसका कोई मतलब है, जब वो दो में से एक कैटेगरी में फिट होता हो।
अच्छा, दो कैटेगरीज, कौन सी?
पहली है विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक कथन। ये वो कथन है जो अपनी परिभाषा से ही सच होते हैं, जैसे सारे अविवाहित पुरुष कुआरे हैं, या गणित के फॉर्मूले जैसे 2+2=4।
ठीक है, ये तो समझ आया, परिभाषा से ही सच। और दूसरी?
दूसरी कैटेगरी है अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य, यानी एम्पिरिकली वेरिफाइबल कथन। ये वो बातें हैं जिनकी सच्चाई या झूठ को हम अपने अनुभव से, अपनी इंद्रियों से देखकर, सुनकर, छूकर जांच सकते हैं। कम से कम सिद्धांत में तो जांच सकते हैं।
जैसे?
जैसे इस कमरे में कुर्सी है या पानी 100 डिग्री पर उबलता है, हम इन्हें देख सकते हैं, माप सकते हैं।
ठीक है,
तो अगर कोई बात न तो परिभाषा से सच है न ही अनुभव से जांची जा सकती है, तो एयर के हिसाब से वो सिर्फ गलत नहीं बल्कि अर्थहीन है,
मीनिंगलेस,
निरर्थक। ये बहुत बड़ा दावा था।
बाप रे।
इसका मतलब था कि सदियों से दार्शनिक जिन बड़े सवालों पर सिर खपाते आए थे, ईश्वर है या नहीं, आत्मा अमर है, दुनिया क्यों है, एयर के लिए ये सार्थक सवाल ही नहीं थे।
मतलब ये सवाल ही गलत थे।
हाँ, उनके फ्रेमवर्क में ये सवाल पूछना ही भाषा का दुरुपयोग था, क्योंकि इन दावों को न तो आप परिभाषा से सच साबित कर सकते हैं न अनुभव से जांच सकते हैं, तो ये बस निरर्थक शब्द थे, बकवास जैसे। और यही बात उन्होंने नैतिकता और धर्म के बारे में कही जाने वाली बातों पर भी लागू कर दी।
ये तो वाकई चौंकाने वाला था। मतलब दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम गंभीर मानते थे, वो सब बेकार।
नैतिकता के बारे में उनके विचार को संवेगवाद कहते हैं, इमोटिविज्म। वो क्या था? हाँ, संवेगवाद उनके सत्यापन से जनन का ही एक नतीजा था। उनका कहना था कि जब हम कहते हैं चोरी करना बुरा है या दान देना अच्छा है, तो हम कोई फैक्ट नहीं बता रहे।
तो फिर क्या कर रहे हैं
हम? असल में अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, अपनी पसंद या नापसंद, जैसे चोरी छी या दान वाह। और साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे भी वैसे ही महसूस करें या वैसा ही करें।
अच्छा, तो ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं, कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं है
उनके अनुसार। हाँ, ये तथ्यात्मक बयान नहीं है, ये भावनात्मक और प्रेरक बयान है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि नैतिक बातों पर बहस करना ही बेकार है अगर सब अपनी अपनी भावनाएं बता रहे हैं तो।
ये पारंपरिक नैतिकता की समझ के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। हालांकि बाद में इस पर बहुत बहस हुई कि क्या ये वाकई हमारे नैतिक अनुभव को पूरी तरह समझा पाता है। इसके अलावा ज्ञान के सिद्धांत में भी उनका एक अहम विचार था, प्रत्यक्ष प्रतीतिवाद,
फिनोमिनलिज्म।
हाँ, ये क्या था?
कि हम चीजों को सीधे नहीं जानते।
कुछ वैसा ही एयर का तर्क था कि हमें दुनिया का सीधा ज्ञान नहीं होता, हमें जो मिलता है वो है संवेदना आंकड़े, सेंस डेटा।
सेंस डेटा मतलब?
मतलब रंग, आवाज, गंध, स्पर्श, स्वाद, ये सब। जैसे जब हम एक सेब देखते हैं तो हमें सीधे सेब नहीं मिलता, हमें मिलता है लाली, गुलाई, चिकनाहट का अनुभव। एयर का कहना था कि भौतिक चीजों के बारे में हमारे सारे कथन सिद्धांत रूप में इन संवेदना आंकड़ों के बारे में कथनों में बदले जा सकते हैं। हालांकि ये विचार भी काफी पेचीदा निकला।
तो इन सब क्रांतिकारी विचारों को उन्होंने अपनी किताबों में कैसे रखा? सबसे असरदार किताब कौन सी थी?
बिना किसी शक के उनकी पहली किताब भाषा, सत्य और तर्क, लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक, 1936 में आई थी ये, और तब वो सिर्फ 24 साल के थे।
सिर्फ 24 साल?
जी, ये किताब एक तरह का घोषणा पत्र थी, एकदम तीखी, साफ और आत्मविश्वास से भरी हुई। इसी ने तार्किक प्रत्यक्षवाद को ऑक्सफोर्ड और फिर पूरे अंग्रेजी भाषी दर्शन में फेमस कर दिया। इसकी स्टाइल इतनी सीधी और भड़काऊ थी कि इसने तुरंत बहस छेड़ दी।
कमाल है। क्या उनकी बाद की किताबों में, उनके विचारों में कुछ नरमी आई या वो वैसे ही रहे?
हाँ, उनके विचार विकसित हुए। 1940 में आई अनुभवीय ने ज्ञान की नींव, द फाउंडेशंस ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज, इसमें उन्होंने ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रतीतिवाद पर और विस्तार से लिखा। फिर 1956 में ज्ञान की समस्या आई, ये ज्ञान के पुराने सवालों से जूझती है, जैसे संशयवाद से, ये थोड़ी ज्यादा संतुलित लगती है। और 1973 की किताब दर्शन के केंद्रीय प्रश्न, द सेंट्रल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी तक आते आते वो शुरुआती प्रत्यक्षवाद की कठोरता से कुछ हटकर ज्यादा सूक्ष्म भाषाई विश्लेषण की तरफ बढ़ते दिखते हैं। लेकिन जो मूल जोर था, स्पष्टता, तर्क, अनुभव, वो बना रहा।
अच्छा, अगर हम एयर की तुलना उस समय के दूसरे विचारकों से करें, जैसे महाद्वीपीय दार्शनिक थे हाइडेगर, सात्र।
ओ, उनसे तो जमीन आसमान का फर्क था। जहां एयर भाषा के लॉजिक और वेरिफिकेशन पर जोर दे रहे थे, वहीं हाइडेगर और सार्त्र जैसे लोग अस्तित्व, शून्यता, आजादी जैसे गहरे तत्व मीमांसक सवालों में डूबे हुए थे।
वही सवाल जिन्हें एयर ने अर्थहीन कह दिया था।
हाँ बिल्कुल, उनकी स्टाइल, उनकी समस्याएं, उनके तरीके सब एकदम अलग थे।
और अमेरिका में व्यवहारवादी प्रैग्मेटिस्ट्स थे जैसे जॉन डुई, उनसे क्या फर्क था?
जॉन डुई और दूसरे व्यवहारवादी विचारों को उनके व्यवहारिक नतीजों से परखते थे कि क्या कोई विचार काम करता है, क्या वो फायदेमंद है। एयर के लिए ये मुद्दा नहीं था।
अच्छा।
उनका फोकस था भाषा की तार्किक बनावट पर कि क्या कोई बात सैद्धांतिक रूप से जांची जा सकती है या नहीं, उसका दुनिया में क्या असर होता है, इससे उन्हें ज्यादा मतलब नहीं था। एयर के लिए दर्शन का काम दुनिया बदलना नहीं बल्कि हमारे विचारों को साफ करना था।
तो आज जब हम पीछे देखते हैं, एयर का क्या योगदान मानते हैं आप? लॉजिकल पॉजिटिविज्म तो अब ज्यादा माना नहीं जाता, तो क्या वो आज भी प्रासंगिक है?
ये बात सही है कि उनका वो सत्यापन सिद्धांत खासकर अपने शुरुआती रूप में काफी आलोचनाओं के बाद अब शायद ही कोई मानता हो, लेकिन एयर का असर बहुत गहरा है। उन्होंने एंग्लो अमेरिकन फिलॉसफी का एजेंडा ही बदल दिया।
अच्छा, कैसे?
उन्होंने विश्लेषणात्मक दर्शन की परंपरा को इतनी ताकत दी कि आज भी फिलॉसफी में स्पष्टता, तार्किक कठोरता और वैज्ञानिक सोच को बहुत अहमियत दी जाती है।
तो कह सकते हैं कि भले ही उनके जवाब टिके नहीं, पर उन्होंने जो सवाल उठाए और जिस तरह से उठाए, उसने दर्शन करने का तरीका बदल दिया।
बिल्कुल, उन्होंने दार्शनिकों को मजबूर किया कि वो जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका आधार क्या है, इस बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचें। आज भी भाषा का दर्शन, मन का दर्शन, ज्ञान का सिद्धांत, ये सब कहीं ना कहीं एयर के उठाए सवालों से जूझते हैं। और उनका जो तत्व मीमांसा पर हमला था, उसने एक तरह से बाद में आने वाले दार्शनिक प्रकृतिवाद, फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म के लिए भी रास्ता बनाया। ये सोच की असलियत वही है जिसका विज्ञान अध्ययन करता है।
और एक बात और थी, वो सिर्फ अकेडमिक दार्शनिक नहीं थे, वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी थे।
हाँ, ये भी उनकी विरासत का एक जरूरी हिस्सा है। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रहे। वो अक्सर रेडियो, टीवी पर बहस करते थे, अखबारों में लिखते थे, मुश्किल दार्शनिक विचारों को आम लोगों तक ले जाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ये दिखाया कि दर्शन समाज की बहसों का हिस्सा बन सकता है।
उनके कुछ मशहूर कथन बताइए जो उनके विचारों का निचोड़ हो।
एक तो उनकी पहली किताब से बहुत मशहूर है, कोई भी वाक्य जो एक परात्पर ईश्वर की प्रकृति का वर्णन करने का दावा करता है, उसका कोई शाब्दिक महत्व नहीं हो सकता।
बिल्कुल, सीधा हमला।
जी, ये सीधे सीधे उनके वेरिफिकेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल है, क्योंकि ईश्वर के होने या ना होने को या उसके गुणों को आप अनुभव से जांच नहीं सकते, इसलिए एयर के लिए ऐसे वाक्य असल में मीनिंगलेस थे।
और कोई?
एक और कथन है जो उनके पूरे प्रोजेक्ट की भावना बताता है। दार्शनिकों के पारंपरिक विवाद अधिकांशतः उतने ही अनुचित हैं जितने कि निष्फल।
अच्छा।
इसमें उनका वो क्रांतिकारी इरादा साफ दिखता है। उनका मानना था कि सदियों से चली आ रही बहुत सी दार्शनिक लड़ाइयां असल में भाषा की गड़बड़ी या कन्फ्यूजन की वजह से हैं। अगर हम अपनी भाषा साफ कर लें तो ये दिक्कतें या तो हल हो जाएंगी या पता चलेगा कि वो दिक्कतें थीं ही नहीं।
जाहिर है, इतने तीखे विचारों की आलोचना तो जमकर हुई होगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
सबसे बड़ी और शायद सबसे मारक आलोचना तो खुद वेरिफिकेशन प्रिंसिपल पर ही हुई।
अच्छा,
कैसे?
आलोचकों ने पूछा, भाई आपका ये जो सिद्धांत है कि हर सार्थक कथन ने या तो विश्लेषणात्मक हो या अनुभव से जांचा जा सके, ये सिद्धांत खुद क्या है?
हाँ, ये तो परिभाषा से सच नहीं लगता।
बिल्कुल, ये विश्लेषणात्मक तो है नहीं। और क्या आप इसे किसी अनुभव से जान सकते हैं? नहीं।
ओह,
तो क्या वेरिफिकेशन प्रिंसिपल खुद ही अपने नियम के हिसाब से अर्थहीन नहीं है?
ये तो जबरदस्त बात है।
मतलब सिद्धांत खुद ही अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरा।
हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा भी बहुत आलोचनाएं हुईं, जैसे अमेरिका के बड़े दार्शनिक थे W.V.O. क्विन।
हाँ, क्विन।
उन्होंने अपने मशहूर लेख टू डॉग्मास ऑफ एम्पिरिसिज्म में वो जो एयर का साफ बंटवारा था ना विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक कथनों के बीच, उसी पर सवाल उठा दिया।
अच्छा, उस नींव पर ही?
जी। फिर नैतिकता में संवेगवाद की आलोचना हुई कि ये नैतिक बहस और असहमति को ठीक से नहीं समझ पाता, ये नैतिकता को सिर्फ अपनी अपनी पसंद नापसंद का मामला बना देता है। और थॉमस कुहन जैसे विज्ञान के इतिहासकारों ने विज्ञान की उस सीधी साधी तर्क वाली तस्वीर को चुनौती दी जो प्रत्यक्षवादी मानते थे।
ये तो हुई एकेडमिक बातें, लेकिन एयर का व्यक्तित्व भी बड़ा रंगीन था। सुना है दोस्त उन्हें फ्रेडी बुलाते थे।
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ किताबों वाले प्रोफेसर नहीं थे, लंदन के बौद्धिक और सेलिब्रिटी सर्कल में काफी पॉपुलर थे। पार्टियों की जान होते थे, हाजिर जवाब आकर्षक।
चार बार शादी भी की उन्होंने।
जी हाँ, काफी दिलचस्प जिंदगी थी उनकी।
और वो द्वितीय विश्व युद्ध वाली बात कि उन्होंने जासूसी भी की, ये तो यकीन करना मुश्किल है।
हाँ, ये सचमुच हैरान करने वाला है। युद्ध में वो पहले वेल्श गार्ड्स में ऑफिसर थे, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज MI6 और SOE के लिए काम किया।
MI6 और SOE मतलब सीक्रेट एजेंट।
हाँ, कहा जाता है कि इसमें फ्रांस में दुश्मन के इलाके में पैराशूट से उतरना और वहाँ गुप्त ऑपरेशंस में मदद करना भी शामिल था।
अविश्वसनीय, फिलॉसफी के प्रोफेसर से स्पाई। और कोई मजेदार बात?
वो नाचने में बहुत अच्छे थे, जैज संगीत पसंद करते थे और फुटबॉल के दीवाने थे, टॉटनहैम हॉटस्पर क्लब के।
अच्छा।
और एक और बड़ा मशहूर किस्सा है 1988 का, जब वो लगभग मरते मरते बचे थे, मछली का कांटा गले में फंस गया था और उनकी क्लिनिकल डेथ हो गई थी कुछ देर के लिए।
ओहो।
बाद में उन्होंने उस अनुभव के बारे में लिखा भी, कुछ रहस्यमयी रोशनी और ब्रह्मांड के स्वामियों से मिलने जैसी बातें कहीं, हालांकि वो नास्तिक ही बने रहे। और हाँ, एक बार तो उनकी बॉक्सर माइक टाइसन से भी भिड़ंत हो गई थी एक पार्टी में।
माइक टाइसन से क्या हुआ था?
खबरों के मुताबिक एयर ने टाइसन को एक महिला को परेशान करने से रोकने की कोशिश की थी।
अरे बाबरे, हिम्मत की बात।
जी,
क्या शख्सियत है। तो इस सारी बातचीत को समेटें तो कह सकते हैं कि AJ एयर एक बहुत ही जटिल और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका मुख्य योगदान था तार्किक प्रत्यक्षवाद को एंग्लो अमेरिकी दर्शन में लाना और दर्शन करने के तरीके को बदलना, उसे ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा स्पष्ट बनाने की कोशिश करना।
बिल्कुल, भले ही उनके दिए गए खास जवाब जैसे वो कठोर सत्यापन सिद्धांत आज माने नहीं जाते, लेकिन उनका असर बहुत गहरा और स्थायी है। उन्होंने दर्शन को मजबूर किया कि वो अपने दावों के मतलब और आधार के बारे में ज्यादा सोचे, ज्यादा जवाबदेह बने। आज भी जब हम भाषा, ज्ञान, विज्ञान पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एयर की शुरू की हुई बहस की गूंज सुनाई देती है।
तो शायद आखिर में सोचने वाली बात यह है, एयर ने हमें ये सिखाया कि सिर्फ बड़े सवाल पूछना ही काफी नहीं है, ये पूछना भी जरूरी है कि हमारे सवालों का मतलब क्या है और हम उनके जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। भले ही उनके तरीके पूरी तरह सही न रहे हों, पर ये सवाल कि हम जो कहते हैं, खासकर मूल्यों, विश्वासों, यथार्थ के बारे में, उसका असली मतलब क्या है, उसकी कसौटी क्या है, ये आज भी उतना ही जरूरी है, नहीं?
हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्तर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।